मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को, जिसमें हम लोग ज्ञान और अनुमान पर बातें कर रहे थे, उसे ही एक अलग व्यावहारिक रूप में आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। दो छोटी छोटी खबरें हैं जो आज के अखबार में छपी हैं। बस सामान्य सी जानकारी के लिए आपको अपडेट कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जो एशियन गेम है वो 10 सितंबर से होने थे और ये चीन में होने थे। चीन की एक जगह है झांगझू, वहां होने थे, लेकिन वहां चूंकि अभी भी कोरोना का संकट बना हुआ है, उसके केसेस आ रहे हैं, तो अब इसे लगभग एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जो एशियन गेम होंगे चाइना में ही होंगे, लेकिन वो 23 सितंबर 2023 यानी कि अगले साल होंगे, जो 8 अक्टूबर तक चलेंगे। एशियन गेम की मैं बात कर रहा हूं और यहां आपके दिमाग में यह सत्य दर्ज हो जाना चाहिए कि ये खेल क्यों टले हैं, कोरोना के कारण, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं। आज एक अखबारों में स्टेटमेंट आया है जो कल संसद में बताया गया कि पिछले 3 सालों में लगभग 3.92 लाख, मोटे तौर पर 4 लाख कह सकते हैं, लोगों ने जो भारतीय थे भारत की नागरिकता छोड़ी है। मोटे तौर पर 4 लाख, एक जगह 3.92 लाख नागरिकता छोड़ी है। क्योंकि सिटीजनशिप आपके सिलेबस में है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, ये सामान्य सी बात है। और ये जो जितनी भी नागरिकता लोगों ने छोड़ी है, इनमें से 1.70 यानी कि 1,70,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। लेकिन आप देखिए कि लगभग 45% लोग जो छोड़ने वाले हैं अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं, यानी कि अमेरिका भारतीयों का सबसे चहेता राष्ट्र है नागरिकता ग्रहण करने के बारे में। तो ये दो छोटे छोटे तथ्य थे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक जो एडिटोरियल कमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसका टाइटल है नॉट माइनर इशू। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका हिंदी वर्जन हम लोग उपलब्ध कराएंगे, सार के रूप में हम लोग देते हैं जैसा कि आप जानते हैं। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से कहा है कि, मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है कि जब हम अल्पसंख्यकों का निर्धारण करते हैं तो वो राज्यों को के अनुसार होना चाहिए, राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि वो अपने यहां अल्पसंख्यकों को देखें कि वो किसे अल्पसंख्यक मानते हैं किसे अल्पसंख्यक नहीं। इस पर पिछले कुछ समय से बहस चल रही थी। अब आप देखिए कि हमारे पास दो लिस्ट है, सूची, दो तरह की सूचियां हैं, एक केंद्र सरकार की सूची है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की सूची है। तो केंद्र सरकार में हमारा जो अल्पसंख्यक आयोग है, बकायदे उसने केंद्रीय स्तर पर यानी कि भारत सरकार के स्तर पर घोषित किया हुआ है कि ये अल्पसंख्यक हैं। आप जानते हैं उसमें हिंदू हैं, उसमें क्रिश्चियन हैं, उसमें पारसी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, इन्हें हम एक प्रकार से अल्पसंख्यक मानते, एक प्रकार से क्या, ये अल्पसंख्यक घोषित है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर है। अब राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी अपनी सूची है। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास अपनी लिस्ट है, जहां जैसे केंद्र सरकार में भर्ती और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसमें जो रिजर्वेशन है वो स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार की सूची के अनुसार होगा। लेकिन राज्य जब अपने स्टेट सिविल सर्विसेज लेते हैं तो वहां वो रिजर्वेशन अपने ढंग से देते हैं। हो सकता है कि केंद्र की सूची में जो शेड्यूल ट्राइब हो वो राज्य की सूची में न हो, तो ये वेरिएशंस दिखाई देते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आप केंद्र के सूची को लागू करते हैं तो कुछ राज्यों में संकट खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि सिख अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में आप क्या करेंगे? क्रिश्चियंस अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मिजोरम में क्या करेंगे? वो तो वहां बहुसंख्यक हैं। तो इस तरह की समस्याएं अब आने लगी हैं और ये मांग की जाने लगी है कि राज्यों के स्तर पर इसका निर्धारण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह बात कही है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो डेफिनेटली कुछ अलग तरह के संकट उठकर खड़े होंगे। इसी पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना एडिटोरियल कमेंट लिखा है, तो आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उसे देखें पढ़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट यह है। दोस्तों, एक और भी आज मैं आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, दैनिक भास्कर का है, जमानत पर स्पष्ट कानून बनाना जरूरी। जमानत को लेकर ये बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, इसे आप कैसे पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगा। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसे आप पॉइंट में डिवाइड कर दें। पॉइंट में इस रूप में डिवाइड करें कि अगर जरूरी है तो डेफिनेटली इस एडिटोरियल कमेंट में ये बताया गया होगा ना कि भाई क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी लग रहा है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो दो तीन दिन पहले ही एक बात कही है कि सरकार को चाहिए कि वो जमानत को लेकर के बहुत स्पष्ट कानून बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ जमानत देने के कानून बहुत स्पष्ट नहीं है, वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जो न्यायाधीश हैं जमानत पर अपने अपने ढंग से निर्णय लेते हैं, तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, जबकि जो न्याय है, न्याय जो निर्णय लेता है उनके फैसलों में एक रूपता होना चाहिए, और अगर वो एक रूपता नहीं है तो लोगों का विश्वास न्याय पर से घटेगा, यानी कि न्यायाधीश पता नहीं अपने अपने ढंग से जमानत देते हैं जमानत नहीं देते हैं। तो न्यायालय ने तो अपनी समस्या जो रखी है वो बिल्कुल सही रखी है। तो यहां आपको सबसे बड़ी बात जो इसमें करनी है, एडिटोरियल कमेंट को आप कैसे पढ़ेंगे, वो देखें कि सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों लगा कि जमानत पर स्पष्ट कानून बनाना जरूरी है। एक पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया, इसी तरह के पॉइंट्स इसमें और निकलेंगे, बहुत खूबसूरत पॉइंट निकलेंगे, आप निकालिए, निकालने की कोशिश कीजिए, मिलेंगे उसमें, और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इतनी क्षमता तो आप में होनी ही चाहिए, कोई बात नहीं, आप करके देखिए, कल मैं इस पर बातें करूंगा कि आपने वही पॉइंट निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, क्योंकि अगर आप पॉइंट नहीं निकालेंगे तो इस टॉपिक पर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो सकेगी। और देखिए, जमानत को लेकर के अभी की बात नहीं है, पिछले काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बकायदे ये आश्वासन दिया है कि जो ये जमानत की जो स्थिति होती है, जो सजा की जो व्यवस्था है, इसके बारे में सरकार बहुत जल्दी कानून लाएगी। चूंकि गृह मंत्री ने ये बात कही है तो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि सरकार का स्टेटमेंट है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज आप ऐसा करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं इस तरह के होमवर्क दे रहा हूं तो आप लोगों से जो ईमेल मिलते हैं उसमें आप लोग इसका उल्लेख करते हैं कि आपने ऐसा किया और ये पॉइंट आपने निकाले और इससे आपको लाभ हो रहा है। और दोस्तों, चूंकि आपको लाभ हो रहा है इसीलिए मैं इस सिस्टम को कंटिन्यू किए हुए हूं, अन्यथा मैं इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाता। एक मैं आपको बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, दैनिक जागरण का, शिवकांत शर्मा जी का है, वह है ब्रिटेन से सीखे लोक और तंत्र का सबक। मेरे पास अभी वक्त नहीं है ये किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पर बात कर सकूं, लेकिन इस पर हो सका तो फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपके लिए मेरी सलाह है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उन्हें नोट कर लें। दो रूप में यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक है वंशवाद को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के, जिसकी लगातार खूब चर्चा होने लगी हमारे यहां, और दूसरा है पार्टी के अंदर जो एक लोकतंत्र की व्यवस्था होती है। इन दो बिंदुओं के आधार पर आप इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, अब मैं आता हूं खासकर ज्ञान और अनुमान को लेकर के, जो हम बात कर रहे थे मुख्य विषय के अंतर्गत, कि जो अनुमान है, अनुमान की जो क्षमता है वो आपके लिए क्यों जरूरी है। आइए एक घटना को लेते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट है। आज के अखबारों में आपने देखा कि जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले टूटकर 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है और एक बड़ी गिरावट है, इसको लेकर के अखबारों में आज खबर छपी है और डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे और बकायदे आर्टिकल्स भी आएंगे, क्योंकि एक बड़ी बात है 80 रुपए तक पहुंच जाना थोड़ा सा लोगों को चिंतित करने लगा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रुपया गिरता रहा तो हमारे लिए आयात महंगा हो जाएगा, जब आयात महंगा हो जाएगा तो कच्चे माल के रूप में हम बहुत सी चीजें मंगाते हैं, तो उससे जब चीजें बनेंगी तो वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी और हम अभी खुद महंगाई से परेशान हैं और हमारा निर्यात जरूर सस्ता हो जाएगा। तो यह जो तथ्य है आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आप इस खबर को पढ़ेंगे तो खबर को पढ़ने के दौरान आपको एक वाक्य मिलेगा जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसे सामान्य तौर पर हम लोग मिस कर जाते हैं। वो वाक्य क्या है? वाक्य ये है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसी पर आएंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हिंदुस्तान ने इसको लेकर के जो एडिटोरियल कमेंट लिखा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप पढ़िएगा। हुआ यह है कि अमेरिका भी महंगाई से परेशान है, हम भी महंगाई से परेशान थे, हैं भी। तो भारत ने महंगाई से परेशानी से उबरने के लिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे मैं भारत कह रहा हूं, उसने क्या किया, याद करने की कोशिश कीजिए कि ब्याज दर बढ़ा दिया। ये किया हमने, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वही सब है ना, हमने ब्याज दर बढ़ा दी। स्वाभाविक है कि अमेरिका भी वही करेगा, वो भी महंगाई से परेशान है। तो अमेरिका ने भी महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने यहां की ब्याज दर बढ़ा दी। अब जब ब्याज दर बढ़ा दी तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब ब्याज दर बढ़ाए जाएंगे तो दोनों तरफ से, अगर ब्याज दर बढ़ाए जाएंगे और दोनों तरफ से ही बढ़ाए जाएंगे, तो अगर आप मेरे पास धन जमा करते हैं तो मैं आपको ज्यादा ब्याज दूंगा। तो अब कल्पना करके देखिए कि ऐसे लोग जो अमेरिका के हैं और भारत में पैसा लगाए हुए थे, यानी कि शेयर मार्केट में मान लीजिए पैसा लगाए हुए हैं, दूसरे जगहों पर पैसा लगा, इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने धन पैसा, अब उनको अगर अमेरिका के बैंक में वो पैसा जमा कर देते हैं तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना, तो वे तो अपना लाभ देखेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो अमेरिका में पैसा शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब हमारे यहां से धन निकाल करके वो अमेरिका के बैंक में जमा करेंगे। तो जब हमारे यहां से धन निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो तो डॉलर लेकर के जाएंगे, वो डॉलर लेकर के जाएंगे ना, पैसा तो रुपया तो लेकर के जाएंगे नहीं, वहां के बैंक में जमा नहीं होगा। तो अब आपको केवल ये कल्पना करना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं। अब आप केवल यह देखिए कि अगर वे डॉलर यहां से लेकर के अमेरिकन बैंक में जमा करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि रुपया पर उसका क्यों और किस तरीके का असर होगा। इसको केवल समझने की कोशिश कीजिए, तुक्का नहीं, अर्थशास्त्र के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। और एक बार जब आप इसे समझ जाए तो इस साल जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, 93 नंबर का क्वेश्चन है सेट सी में, सी सेट में, आपको मैं बता चुका हूं कि मेरे पास जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका सेट सी है, उसका 93 नंबर का क्वेश्चन है। उस 93 नंबर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें, देखिए शायद आपको मजा आए और इससे अनुमान लगाने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, शायद उस पर आपको यकीन भी होने लगे। आप लोग अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें ईमेल के जरिए, नहीं तो फिर मैं डेफिनेटली इसके ऊपर और आगे बातें करूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, निहारिका उत्तर प्रदेश से, नांदी रावल अहमदाबाद से, सुंदरम बेगूसराय बिहार से, और रेखा मराठी उदयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।